नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात अधिकांश राज्यों के लिए 60% और 40% होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90% और 10% होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा। अमन यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों और अन्नदाताओं की अहम भूमिका है और सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कल असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उर्वरक पर बड़ी सब्सिडी देती है।
जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है। भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती है। उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को करीब 3000 रुपया देना पड़ता है।
रेलवे 26 दिसंबर से रेल किराए को युक्तिसंगत बनाएगा। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से वृद्धि की जाएगी। मेल, एक्सप्रेस और वातानुकूलित गाड़ियों में ये दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। रेलवे के अनुसार किराए में वृद्धि से लगभग 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बुधवार को संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण करेगा। ये अमेरिका की एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी का उपग्रह है जो एलवीएम 3M6 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह होगा। ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रहों की अगली पीढ़ी है जिसे अंतरिक्ष से सीधे सामान्य मोबाइल स्मार्टफोन को सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अरावली की पारिस्थितिकी को कोई तत्काल खतरा नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि वृक्षारोपण, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनाओं और खनन तथा शहरी गतिविधियों की कड़ी निगरानी से ये सुनिश्चित होता है कि अरावली प्राकृतिक धरोहर और पारिस्थितिक कवच के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने किसी तरह की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश नहीं की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश के मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में 20 से 25 युवकों ने बांग्लादेश के उच्चायोग के सामने एकजुट होकर नारे लगाए थे। इसराइल की कैबिनेट ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों के निर्माण के प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी। इसराइल के वित्त मंत्री बेजिल सुमोट्रिच ने कहा कि इस योजना में 2 ऐसी बस्तियां शामिल हैं जिन्हें 2005 के अलगाव कार्यक्रम के तहत खाली कराया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापत्तनम में श्रीलंका को पहले T20 मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत को 122 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 32 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अगला मुकाबला 23 दिसंबर को विशाखापत्तनम में ही खेला जाएगा। अंतिम 3 मैच तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।